नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर श्रीमती मुर्मू ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण है। भारत रूस रणनीतिक भागीदारी के इस साल 25 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच अटूट मित्रता है और ये अधिक प्रगाढ़ होती रहेगी। भारत और रूस ने रक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, संस्कृति और मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में 16 समझौते किए हैं। नई दिल्ली में 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उपस्थिति में ये समझौते हुए। इसके बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई और संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान किया।
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत।
प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन भारत रूस व्यापार मंच में भी शामिल हुए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार गुजरात जाएंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ये दिन महापरिनिर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर आम्बेडकर भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने पीढ़ियों को मानवीय गरिमा को बनाए रखने और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि समानता, सम्मान और बंधुत्व के लिए डॉक्टर आम्बेडकर के अथक संघर्ष ने आधुनिक, प्रगतिशील और समावेशी भारत की नींव रखी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में बनास डेयरी में सहकारिता मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की तीसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। श्री शाह गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर हैं। वे सनादर में बनास डेयरी के जैव, सीएनजी और उर्वरक संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे तथा अत्याधुनिक 150 टीबीडी मिल्क पाउडर और बेबी फूड संयंत्र का शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल श्री अमित शाह ने गांधीनगर में कृषि, ग्रामीण तकनीक और मानवता को सशक्त बनाने से संबंधित अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन किया और सहकार सारथी पहल के अंतर्गत 13 से अधिक नई सेवाओं और उत्पादों का भी शुभारंभ किया। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। श्री नायडू ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि नागर विमानन मंत्रालय ने बच्चों, माताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए सभी हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालकों के साथ बातचीत की है। भारतीय रेलवे ने सुगम यात्रा और पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए हैं। देश में कुल 37 रेलगाड़ियों में 116 अतिरिक्त डिब्बे लगाए गए हैं। दक्षिण रेलवे ने सबसे ज्यादा डिब्बे बढ़ाए हैं, जिसमें 18 रेलगाड़ियों की क्षमता बढ़ी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबला आज विशाखापत्तनम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीम श्रृंखला में 1-1 की बराबरी पर है। चेन्नई में हॉकी जूनियर विश्व कप में भारत ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दोनों टीमें खेल समाप्त होने तक 2-2 गोल से बराबर थीं, जिसके बाद भारतीय टीम ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत हासिल की। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, झारखंड, उड़ीसा और पंजाब में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज सुबह वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।